अध्याय 22 अशोक के उत्तराधिकारी एवं मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक की मृत्यु के पश्चात कोई भी मौर्य इतना योग्य और शक्तिशाली न हुआ जो विशाल मौर्य साम्राज्य को अक्षुण्ण रख सकता। धीरे धीरे अधीनस्थ प्रदेश स्वतंत्र होते गए और एक दिन ऐसा आया जब मौर्य साम्राज्य इतिहास की एक कहानी मात्र बनकर रह गया। अशोक के अनेक पुत्र थे। अपना 5वें स्तंभ लेख में वह अपने अनेक पुत्रों और राजपुत्रों का उल्लेख करता है, परंतु अभाग्य से उसके अभिलेख तीवर के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुत्र का नाम नहीं लेते। अभी तक ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि तीवर अभी भी मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी रहा हो। साहित्य में महेंद्र का नाम आता है। इसने लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त कार्य किया था, परंतु इस बात पर मतभेद है कि वह अशोक का पुत्र था अथवा जो भी हो, कदाचित वह बौद्ध प्रवृत्ति का होने के कारण राजकीय कार्यों से विरक्त था। उसने भी कभी राज्य नहीं किया। राजतरंगिनी का कथन है कि अशोक के पश्चात जलौक कश्मीर का शासक हुआ। तारानाथ ने वीरसेन को गांधार का शासक माना है। डॉक्टर टॉम्स का मत है कि वह वीरसेन सुभागसेन का पुरोगामी था। पॉलीवियस का कथन है कि जिस समय यूनानी सम्राट एंटियोक्स तिथि ने हिंदुकुश पार करके भारत पर आक्रमण किया, उस समय सुभागसेन भारतीयों का राजा था। कदाचित वह गांधार प्रदेश का शासक था। इससे प्रकट होता है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश मौर्य साम्राज्य से निकल गया था और कश्मीर तक गांधार में नवीन राजवंशों की स्थापना हो चुकी थी। पुराणों में अशोक के उत्तराधिकारियों के नाम मिलते हैं, परंतु उनकी सूची इतनी विवादग्रस्त है कि सशा उत्तराधिकार क्रम निश्चित नहीं होता। यह सूची निम्न प्रकार है। पहला वायु पुराण, कृणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, देववर्मन, सतधनुष और वृत्रथ। दूसरा विष्णु पुराण, सुयश, दशरथ, संगत, शालिशुक, सोम शर्मन, सतधनवन और वृत्रथ। तीसरा मत्स्य पुराण, दशरथ, संप्रति, सतधवन और बृहद्रथ। पुराणों की इन नामावलियों के अतिरिक्त दिव्यावदान में भी अशोक के उत्तराधिकारियों की सूची मिलती है। संप्रति, बृहस्पति, विशेष, पुष्य धर्मन और पुष्य मित्र। कृणाल और संप्रति। अशोक के उत्तराधिकारियों में कृणाल और संप्रति ऐतिहासिक व्यक्ति ज्ञात होते हैं। पुराण एवं बौद्ध और जैन साहित्य में इनका उल्लेख आता है। वायु पुराण का कथन है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात कृणाल ने 8 वर्ष तक राज्य किया। डॉक्टर राय चौधरी का मत है कि संभवतः विष्णु पुराण का नाम सुयशस इसी कृणाल का विरुद्ध था। वे दिव्यावदान और फायन के धर्म विवर्धन को भी कृणाल का विरुद्ध मानते हैं। परंतु जहां वायु पुराण में कृणाल को अशोक का अनुगामी उत्तराधिकारी बताया गया है, वहां बौद्ध और जैन साहित्य में संप्रति को ऊपर से देखने से यह परस्पर विरोधी उल्लेख है, परंतु विचार करने पर इस विरोध का हल मिल जाता है। अनुश्रुति के अनुसार कृणाल अंधा था, अतः राजा होते हुए भी वह राजकार्य न कर पाता होगा। यह राजकार्य वस्तुतः उसका पुत्र संप्रति करता होगा। परिस्थिति के कारण ही किसी ने कृणाल को अशोक का उत्तराधिकारी माना है और किसी ने संप्रति को। दशरथ और संप्रति नागार्जुनी पहाड़ियों के अभिलेखों से अशोक के पौत्र दशरथ का पता चलता है। इसने देवानाम प्री की उपाधि धारण की थी और आजीविकों को गुहा दान दिया था। मत्स्य और वायु पुराण के अनुसार दशरथ अशोक का पौत्र था। इस प्रकार अशोक के 2 पौत्र हुए, दशरथ और संप्रति। डॉक्टर स्मिथ और प्रोफेसर ध्रुव का मत है कि कृणाल की मृत्यु के पश्चात संभवतः मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। इसके पूर्वी भाग का शासक दशरथ बना और पश्चिमी भाग का संप्रति। परंतु इस मत के ग्रहण करने में कई कठिनाइयां हैं। पहला, कोई भी साक्ष्य स्पष्टतः मौर्य साम्राज्य के विभाजन की बात नहीं कहता। दूसरा, पुराणों में संप्रति को मगधराज का उत्तराधिकारी कहा गया है, अतः पश्चिमी भारत के साथ साथ वह पूर्वी भारत का भी शासक था। तीसरा, जैन लेखक संप्रति को पाटलिपुत्र और उज्जैन दोनों का शासक बताते हैं, अतः वह पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों का शासक था। ऐसी परिस्थिति में साम्राज्य विभाजन का मत नहीं ठहरता। यह निश्चित है कि दशरथ और संप्रति दोनों अशोक के पौत्र थे। दोनों ने ही कृणाल की मृत्यु के पश्चात ही शासन किया होगा, परंतु यह स्पष्टतया नहीं कहा जा सकता कि पहले दशरथ ने राज्य किया अथवा संप्रति ने। ऊपर कहा जा चुका है कि संभवतः संप्रति कृणाल का सहयोगी शासक था, अतः कृणाल की मृत्यु के पश्चात उसी को शासक होना चाहिए। जैन और बौद्ध साहित्य ने अंधे कृणाल की अपेक्षा करके सीधे संप्रति को ही अशोक का उत्तराधिकारी बनाते हैं, परंतु इसके विरुद्ध मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण दशरथ को संप्रति का पूर्वगामी बताते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि अशोक के पश्चात ही कुणाल हुआ और कुणाल के पश्चात संप्रति अथवा दशरथ। हाँ, इतना निश्चित है कि एक के मरने के पश्चात दूसरा शासक अवश्य हुआ होगा। संप्रति और दशरथ के साथ अन्य नामों का समीकरण, डॉक्टर राय चौधरी का कथन है कि जैन और बौद्ध साहित्य के संप्रति का समीकरण पुराणों के संगत और इंद्रपालित के साथ करना चाहिए। इस प्रकार इस विद्वान के दशरथ और बंधुपालित को एक ही व्यक्ति माना है, परंतु अधिक स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। शालिशु, विष्णु पुराण के अनुसार संगत के पश्चात शालिशुक राजा हुआ। गार्गी संहिता में भी इस नरेश का उल्लेख होता है। इस ग्रंथ के अनुसार शालिशुक अत्यंत क्रूर और अत्याचारी शासक था। उसे धर्मवादी अधार्मिक राजा कहा गया है। संभवतः इसका समीकरण बृहस्पति से किया जाता है, क्योंकि दिव्यावदान के अनुसार बृहस्पति संप्रति का पुत्र था। देववर्मन और सरधन नुरु नामों की आंशिक समता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि देववर्मन और सोमशर्मन एक ही व्यक्ति थे। इसी आधार पर सतधनु और सतबंधन का समीकरण किया जा सकता है। बृहद्रथ मौर्यवंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। पुराणों और हर्षचरित के अनुसार इसके सेनापति पुष्पमित्र ने उसकी हत्या कर डाली थी। दिव्यावदान ने भूल से पुष्यमित्र को मौर्य वंशावली में रखा है। इस प्रकार 184 ईस्वी पूर्व के लगभग मौर्य राजवंश का अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया और 184 ईस्वी पूर्व में मौर्य राजवंश के हाथ से सदैव के लिए राजसत्ता जाती रही। अन्य राजवंशों की भांति मौर्य वंश का पतन भी न आकस्मिक था न किसी एक कारण से उद्भूत। बहुत दिनों से अनेकानेक कारण मौर्य साम्राज्य को निबल बनाने में सहयोग दे रहे थे, और एक दिन ऐसा आया जब उसके सम्मिलित प्रभावों से जर्जरित हुआ मौर्य साम्राज्य धराशायी हो गया। ये कारण निम्न प्रकार थे। पहला, राजतंत्रात्मक शासन का चिराशन्य दोष। राजतंत्रात्मक शासन अपने स्थायित्व के लिए बहुत कुछ राजा की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर रहता है। शासन के समस्त अधिकारी विभाग और सूत्र मूलतः राजमुखापेक्षी होते हैं। राजा ही संपूर्ण साम्राज्य का केंद्र बिंदु होता है। उसी के चतुर्दिक राज्य के समस्त कार्य कलाप होते हैं। परिणाम यह होता है कि केंद्र रूप राजा जब तक सुस्थिर सुदृढ़ और सुनिश्चित होता है तब तक शासन चक्र निर्बाध रूप से चलता रहता है। परंतु जैसे ही केंद्र अशक्त अस्थिर और निश्चित हो जाता है, वैसे ही उससे शक्ति ग्रहण करने वाले तथा उसके चतुर्दिक घूमने वाले अवयव भी अनियमित और अशक्त हो जाते हैं। यही कारण है कि राजतंत्रात्मक शासन की स्थिरता और अस्थिरता राजा की व्यक्तिगत योग्यता अथवा अयोग्यता पर ही निर्भर रहती है। मौर्य साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। अशोक के समय तक मौर्य शासक सुयोग्य शक्तिशाली रहे, अतः उसके व्यक्तिगत संरक्षण और निरीक्षण में संपूर्ण सुचारू रूप से चलता रहा। परंतु अशोक के पश्चात कोई भी मौर्य शासक उतना सुयोग और शक्तिशाली न हुआ, अतः केंद्रीय शासन निर्बल और अयोग्य हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण साम्राज्य के सूत्र ढीले होने लगे और धीरे धीरे वे खंडित होने लगे। अशोक के उत्तराधिकारियों के व्यक्तित्व में वो आकर्षण न था जो पदाधिकारियों को प्रेरणा दे सकता, जनता को कल्पना दे सकता और शासन यंत्र को शक्ति दे सकता। दूसरा, केंद्रीय शासन की निर्बलता। अशोक के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता के कारण केंद्रीय शासन निर्बल हो गया। इस निर्बलता से लाभ उठाकर मौर्य साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करनी प्रारंभ कर दी। राजतरंगिनी का कथन है कि अशोक के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र जलोक ने कश्मीर में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तारानाथ के साक्ष्य से प्रकट होता है कि वीरसेन नामक एक अन्य राजपुत्र ने गांधार पर शासन स्थापित कर लिया था। मालविका अग्निमित्र से प्रकट होता है कि विदर्भ स्वतंत्र हो गया था। तीसरा, प्रांतीय शासकों का अत्याचार। ऐसा प्रकट होता है कि मौर्य साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों का शासन संतोषजनक न था। बहुधा उनके शासन प्रजा का उत्पीड़न करते थे। समय समय पर अपने शासकों के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर प्रांतीय प्रजा ने विद्रोह भी किए थे। दिव्यावदान इस प्रकार के दो विद्रोहों का उल्लेख है। बिंदुसार के असमय में तक्षशिला में प्रथम विद्रोह हुआ। उसे शांत करने के लिए जब अशोक तक्षशिला पहुंचा तो प्रजा ने उससे कहा कि न हम कुमार के विरुद्ध हैं और न राजा बिंदुसार के, परंतु दुष्ट अमात्य हमारा परिभव करते हैं। स्पष्ट है कि यह विद्रोह प्रांतीय अमात्यों की दुष्टता के कारण हुआ था। इसी प्रकार का तक्षशिला में दूसरा विद्रोह अशोक के समय में हुआ था। इसका कारण भी प्रांतीय शासकों का अत्याचार था। प्रांतीय शासकों की अत्याचारपूर्ण मनोवृत्ति का संकेत हमें अशोक के कलिंग अभिलेख से भी मिलता है। उसमें अशोक अपने प्रांतीय पदाधिकारियों के विरुद्ध यह आरोप लगाता है कि बहुधा कारण ही जनता को बंदी बनाते अथवा उत्पीड़न करते हैं। उसी अभिलेख में अशोक ने अपने प्रांतीय पदाधिकारियों को चेतावनी दी कि वे ऐसा न करें और उसकी प्रजा को उसकी संतान समझें। इस भय से कि यही कहीं चेतावनी देने के बावजूद भी प्रांतीय शासक जनता का उत्पीड़न न करते रहे। रहे अशोक ने विशेष अधिकारियों द्वारा प्रति पांचवें वर्ष प्रांति दौरे की योजना घोषित की थी। इस अभिलेख में तक्षशिला और उज्जैन का उल्लेख हुआ है। ये नगर सुदूरवर्ती प्रांतों की राजधानी थे, परंतु अनुमान यह होता है कि अन्य सुदूरवर्ती प्रदेशों की दशा भी ऐसी ही असंतोषजनक रही होगी। प्रांतीय शासकों की अत्याचारपूर्ण नीति ने वहां की जनता के हृदय में मौर्य साम्राज्य के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर दी थी। परिणाम यह हुआ कि अशोक की मृत्यु के पश्चात जैसे ही उन्हें अवसर मिला वैसे ही मौर्य साम्राज्य से पृथक हो गए। अपनी स्वतंत्रता घोषित करने वाले प्रदेशों में तक्षशिला, कलिंग और उज्जैन के राज्य ही प्रथम थे। इन्हीं प्रांत राज्यों का शासन सबसे अधिक अत्याचारपूर्ण था। चौथा, राजाओं का अत्याचार। प्रांतीय शासकों के अतिरिक्त अशोक के उत्तराधिकारियों में कुछ राजा ऐसे भी हुए जो स्वयं अत्याचारी थे। उदाहरणार्थ गार्गी संहिता का साक्ष्य है कि मौर्य सम्राट शालिशु स्वयं अधर्मी और अत्याचारी शासक था। उसने अपनी प्रजा का घोर उत्पीड़न किया था। पांचवा, राज्यसभा में गुटबंदी। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्यों की राज्यसभा में बहुधा गुटबंदी रहती थी। अपने व्यक्तिगत राग द्वेष के कारण राज्य के मंत्री और उच्च पदाधिकारी बहुधा राष्ट्रीय उद्देश्य को भूल जाते थे। उनके संकीर्ण दृष्टिकोण से बहुधा विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी। हमारे समक्ष अशोक के उत्तराधिकार का उदाहरण है। पीछे बताया जा चुका है कि इस प्रश्न को लेकर राज्यसभा में दो दल बन गए थे। उनके षड्यंत्रों ने गृह युद्ध को और भी प्रोत्साहित और त्वरित किया। दूसरा उदाहरण वृद्रथ के काल का है। मालविका अग्निमित्र से अनुमान होता है कि इस समय राज्यसभा में दो दल अपनी अपनी महत्ता स्थापित करने के लिए निरंतर खींचातानी कर रहे थे। एक दल सेनापति का पक्षपाती था और दूसरा सचिव था। स्पष्ट है कि राज्यसभा की इन गुटबंदियों ने राजसत्ता को स्थितिल, विवश और संकटग्रस्त और अनादृत कर दिया था। छठवा, करों की अधिकता। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जिस शासन व्यवस्था का प्रतिपादन किया है उसमें करों की अधिकता है। यद्यपि यह संभव है कि धर्मशास्त्र में उल्लिखित समस्त कर प्रजा पर कभी भी न लगाए गए हों, परंतु कम से कम उनसे मौर्य व्यवस्था की आधारभूत भावना का तो आभास मिलता ही है। निश्चित रूप से यह भावना उपलब्ध साधनों से राजकोष को अधिक से अधिक भरने की थी। यह भी संभव है कि इस भावना से प्रेरित होकर मौर्यों ने प्रजा के ऊपर जो कर लगाए हों उनका भार दुर्बह रहा हो और वे प्रजा में असंतोष का कारण बन गए हों। पतंजलि के महाभाष्य से प्रकट होता है कि धन संग्रह के लिए मौर्यों ने जो साधन अपनाए थे वे सदैव श्लाघ्य न थे। उदाहरणार्थ वे मूर्तियों को बनवा कर बेचते अथवा पूजा के लिए स्थापित करते थे। इस प्रकार जनता की श्रद्धा भक्ति को जागृत करके वे मूर्तियों के द्वारा धन बटोरते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को नंदो पंजाब के यूनानियों तथा आक्रमणकारियों सेल्यूकस से युद्ध करने पड़े थे। इसके पश्चात उसकी साम्राज्य स्थापना भी चतुर्थक युद्धों के परिणाम स्वरूप हुई। स्पष्ट है कि अपनी विशाल सेना के संगठन करने, रखने और बहुसंख्यक युद्ध करने में उसे अपार धनराशि खर्च करनी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त उसने नव संस्थापित राजवंश और साम्राज्य की संरक्षा के लिए जो उपाय निकाले थे वे भी व्यातात्मक थे। इन विविध व्ययों की पूर्ति के लिए चंद्रगुप्त ने यदि अतिसंख्यक कर लगाए हों अथवा विविध उपायों से धन संग्रह किया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अंतोगत्वा, करों का भार प्रजा पर ही पड़ा था। अतः यदि उसे यह कर कष्टकर प्रतीत होते हों तो नितांत स्वाभाविक ही है। हमारा अनुमान है कि मौर्यों के धन संग्रह ने जनता में असंतोष उत्पन्न किया होगा। सातवां, कोष की रिक्तता। ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के महान धर्म प्रचार से राजकोष रिक्त हो चला था। लोकोपकारिता के कार्यों, स्तूपों, विहारों, शिलालेखों, स्तंभ लेखों आदि के निर्माण एवं विदेशों में धर्म प्रचार के कार्यों में अशोक को विपुल धनराशि व्यय करनी पड़ी थी। पुनः वह समय समय पर बौद्ध संघ को मुक्त हस्त होकर दान दिया करता था। इन सब कार्यों ने राजकोष को भारी क्षति पहुंचाई थी। राजाओं की शक्ति कोष पर ही आश्रित है। इस तथ्य को समझाने वाले अमात्यों को चिंता हुई। अशोक अवदान का कथन है कि एक बार अशोक कुकुटा राम विहार को धन दान देना चाहता था, परंतु अमात्यों ने युवराज संप्रति को समझाकर यह दान रुकवा दिया। राजकोष की चिंताजनक अवस्था से व्यग्र होकर ही अमात्यों ने यह कार्य करवाया था। अशोक के उत्तराधिकारियों के समय में अनेकानेक प्रांतों के निकल जाने से राजकोष की आय और भी कम हो गई। भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर एवं पश्चिम देश व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखते थे। इनके स्वतंत्र हो जाने से पाटलिपुत्र का इनके साथ संबंध विच्छेद हो गया। परिणामतः व्यापार को भारी धक्का लगा और इसका दुष्प्रभाव राजकोष पर पड़े बिना न रह सकता था। धनाभाव में साम्राज्य की संरक्षा और स्थिरता कैसे संभव हो सकती थी। आठवां, सैनिक शक्ति का हास। अशोक की अहिंसात्मक एवं धर्म प्रचारात्मक नीति ने साम्राज्य की सैनिक शक्ति को नितांश कर दिया था। अशोक के समय तक अहिंसा की फिलोसफी का इतना विकास न हुआ था कि देश संरक्षा के प्रबल अस्त्र के रूप में राजतंत्र उसका प्रयोग कर सकता। अहिंसा व्यक्ति के लिए व्यवहारिक हो सकती थी, परंतु राज्य के लिए नहीं। भारत के पश्चिमोत्तर में बर्बर जातियां आक्रमण की ताक में खड़ी थी। भारत के भीतर दूरस्थ प्रदेश अपनी स्वतंत्रता घोषित करने की योजना बना रहे थे। ऐसे समय में देश को एक विशाल एवं संगठित सेना की आवश्यकता थी, परंतु अशोक इस आवश्यकता के प्रति नितांत निरपेक्ष था। साम्राज्य की समस्त शक्तियों धर्म प्रचार में लगा दी थी। बुद्ध शरणम गच्छामि के विपुल उद्देश्यों को आकाश गूंज रहा था। इन उद्घोषों के कारण सीमा प्रदेश पर बैठे बैरियों की रणभेरी कैसे सुनाई देती। देश को सैनिकों और सेना नायकों की आवश्यकता थी, परंतु दुर्भाग्य से मिले उसे भिक्षु और प्रचारक। कमंडल से शांति का अभिषेक हो सकता था, देश की रक्षा नहीं। अपने अस्तित्व को खतरे में डालकर विश्व बंधुत्व की स्थापना का प्रयास एक नूतन प्रयोग था। इसे देखकर महापंडित चाणक्य और दुर्घर्ष विजेता चंद्रगुप्त की आत्मा विशुद्ध हो उठी होगी। अशोक की इस नीति का भारी दुष्परिणाम हुआ। देश विदेश में धर्म प्रचार हुआ और उदात्त सिद्धांतों का प्रतिपादन भी, परंतु मौर्य साम्राज्य की संरक्षण न हो सकी। जिस समय विदेशी आक्रमण हुआ, उस समय तक सिकंदर के दांत खट्टे करने वाले तथा सेल्यूकस को पराजित करने वाले भारतीय सैनिकों की तलवारों की धार कुंठित हो चुकी थी। जिस समय साम्राज्य में प्रांतीय विद्रोह हुए, उस समय तक उनका दमन करने वाले सेनानायक कदाचित बौद्ध संघ में प्रविष्ट हो चुके थे। हाउहुश नाव चीनी का कथन है कि भारतीय बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। हिंसा न करना और युद्ध न करना उनका स्वभाव हो गया है। यह स्वभाव परिवर्तन अशोक के महान धर्म प्रचार का परिणाम था। स्वयं अशोक की ही गर्वोक्ति है कि धर्म घोष ने भेरी घोष को बंद कर दिया था। बौद्ध सम्राट ने स्वयं तो अहिंसात्मक नीति अपनाई थी, साथ ही में अपने पुत्र पौत्र को भी उसी नीति का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके प्रोत्साहन का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। कम से कम गार्गी संहिता के कथनानुसार हमारे सम्मुख अशोक के एक उत्तराधिकारीशाली सुख का उदाहरण है। इसने भी अशोक के समान धर्म विजय का नारा बुलंद किया था। अशोक महान था, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु साथ ही साथ उसकी उदात्त नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी हुई। 9वां, विदेशी आक्रमण उपयुक्त कारणों ने मौर्य साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया था। अतः यदि विदेशी आक्रमण न भी हुए होते तो भी मौर्य साम्राज्य का पतन असंभावी था। यवनों के आक्रमणों ने तो इस साम्राज्य को पूर्वता धराशायी होने में योग मात्र दिया था। सर्वप्रथम यूनानी आक्रमण 206 ईस्वी पूर्व का था, परंतु मौर्य साम्राज्य का पतन तो इसके पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। 10वां, ब्राह्मण प्रतिक्रिया। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने यह मत प्रतिपादित किया था कि अशोक की बौद्ध नीति से शुद्ध ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई थी और उसी प्रतिक्रिया ने मौर्य साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। डॉक्टर राय चौधरी ने इस मत का खंडन किया है और यह दिखाने की चेष्टा की है कि न तो ब्राह्मण प्रतिक्रिया हुई और न मौर्य साम्राज्य का पतन से उनका कोई संबंध था, परंतु दोनों ही मत अतिवादी हैं और वास्तविकता दोनों के बीच में है। पंडित शास्त्री के मत के विरुद्ध लिखित बातें कही जा सकती हैं। पहला, अशोक शूद्र न था, अतः जाति के आधार पर ब्राह्मणों को उससे कोई द्वेष न था। दूसरा, अशोक का हिंसा प्रचार कोई नवीन कार्य न था, स्वयं ब्राह्मण ग्रंथों में भी हिंसात्मक यज्ञों को हतोत्साह किया गया है। तीसरा, अशोक के लघु शिलालेख में निम्नलिखित शब्द मिलते हैं, ये माए काल आया जम्बुदीप सी अमीषा देवा खुशुते दानी मीषा कटा। पंडित शास्त्री ने अर्थ लगाया है कि ब्राह्मण जो कि इस लोक में देवता समझे जाते थे, उन्हें अशोक ने झूठा सिद्ध कर दिया। वस्तुतः यह अर्थ सेनॉट महोदय का था, परंतु लेवी महोदय ने इसका खंडन किया है। उनके अनुसार अमीषा शब्द संस्कृत का अमृषा नहीं है। स्वयं अशोक के भाव्याभिलेख से प्रकट होता है कि संस्कृत के अमृषा शब्द के लिए अमीषा अमूषा और मृषा शब्द के लिए मूषा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। वस्तुतः अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त मीषा शब्द से संस्कृत का मृषा और अमीषा से अमृषा शब्दों का अर्थ लगाना चाहिए। इस प्रकार अभिलेख के उपयुक्त उद्धरण का अर्थ यह हुआ कि उस समय तक भारतवर्ष के जो लोग देवता से नहीं मिले थे, वे उनसे मिला दिए गए। अतः इस उद्धरण में ब्राह्मणों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है। तथा पंडित शास्त्री का कथन है कि अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, ये जनता में सदाचारिता के प्रचारक थे, परंतु यह कार्य तो ब्राह्मणों का था, अतः ब्राह्मण अशोक से असंतुष्ट हो गए। परंतु सदाचारिता प्रचार के साथ साथ महामात्रों के अन्य कार्य भी थे, दया यथा राजवंशियों के दानों की व्यवस्था एवं उनका उपयुक्त वितरण, यमनों कम्बोजों गांधारों ब्राह्मणों आदि के कल्याण की चेष्टा करना, अपराधियों को दिए गए दंडों की उपयुक्तता की जांच करना और आवश्यकता पड़ने पर उनमें कमी करना इत्यादि। इससे अतिरिक्त यह भी नहीं कहा जा सकता कि अशोक के महामात्र सदैव अब्राह्मण ही होते थे। 5वां, पंडित शास्त्री का कथन है कि अशोक ने एक नए अधिनियम से ब्राह्मण जाति के विशेषाधिकार छीन लिए और चतुर्वर्णों में दंड समता और व्यवहार समता की प्रतिष्ठा की। परंतु पांचवें स्तंभ लेख को देखने से प्रकट होता है कि अशोक का मंतव्य था कि उसके समस्त राज्यों के निश्चित प्रणाली और नियम के आधार पर दंड दे और व्यवहार करे। उसे भय था कि कहीं ऐसा न हो कि एक अपराध के लिए एक राजुक एक दंड दे और उसी अपराध के लिए दूसरा राजुक कुछ दूसरा दंड। इसी से अशोक दंड और व्यवहार में समता के लिए उत्सुक था। इस अभिलेख में कहीं पर ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई बात नहीं है, परंतु इतना होते हुए भी डॉक्टर राय चौधरी का यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मौर्य साम्राज्य के पतन से ब्राह्मणों का कोई संबंध ही ना था। पीछे कहा जा चुका है कि वैदिक काल से ही ब्राह्मणों क्षत्रियों में सामाजिक प्रभुत्ता के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहा था। शेषवी में दो क्षत्रिय राजवंशों के नेतृत्व में ब्राह्मण धर्म की प्रभुत्ता के विरुद्ध विद्रोह हुआ। इस नवीन संकट का सामना करने के लिए ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था का पुनः संगठन किया, जिसमें चतुर्वर्णों में ब्राह्मण वर्ण को सर्वोपरि स्थान दिया गया और क्षत्रियों द्वारा संस्थापित नवीन धर्मों की निवृत्ति मार्गी विचारधारा के विरुद्ध प्रवृत्ति मूलक गृहस्थाश्रम को प्रधानता दी गई। सूत्र सहित ब्राह्मणों के इसी पुनः संगठन का परिणाम था। ब्राह्मण व्यवस्था के प्रबल पोषक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ब्राह्मणों की सर्वोपरि मान्यता की योजना है। उसने भी बौद्ध भिक्षुओं के प्रचार पर अनेकानेक नियंत्रण लगाए थे। अशोक क्षत्रिय था और साथ में महान बौद्ध प्रचारक भी। अतः पृष्ठभूमि को देखते हुए यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि उसके शासन काल में ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष तथा ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म का पारस्परिक वैमनस्य हो गया होगा। अशोक ने ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, परंतु उसकी नीति ने ब्राह्मण व्यवसाय की पीर मानवताओं को धक्का अवश्य पहुंचाया। यूं तो ब्राह्मण ग्रंथों में भी वर्ण निर्विशेषता का प्रतिपादन मिलता है, परंतु उसे अपवाद ही समझना चाहिए। ब्राह्मण धर्म प्रमुखतया चतुर्वर्ण व्यवस्था और चतुराश्रम व्यवस्था पर आधारित था। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ब्राह्मण वर्ण और गृहस्थाश्रम को सर्वोपरि मान्यता दी गई थी। राजा यह प्रधान कर्तव्य था कि वह इन व्यवस्थाओं को प्रतिष्ठित रखे। अशोक की मनोवृत्ति न ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्वीकार करती थी और न गृहस्थ जीवन की अनिवार्यता को। उसने जिस निर्विशेष नीति का अनुसरण किया था, उसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण और श्रमण हो तथा प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग को समान पद मिला। ब्राह्मणों को यह स्वीकार न था, इस समय तक ब्राह्मणों श्रमणों का विरोध शाश्वतिक हो गया होगा। अशोक ने अहिंसात्मक नीति का अवलंबन लिया था। उससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। क्षत्रिय और राजदंड का परित्याग कर धर्म प्रचार करते हुए देखकर ब्राह्मण वर्ण अवश्य शुद्ध हो उठा होगा। ब्राह्मण व्यवस्था कार थे, अतः राष्ट्र को अव्यवस्थित होते देखकर उनका सचिंत होना स्वाभाविक था। इस प्रकार अशोक के समय में ब्राह्मण क्षत्रियों का संघर्ष जाति का ही संघर्ष न था, वर्ण व नीति और सिद्धांत का भी संघर्ष था। अशोक क्षत्रिय था, वह वर्णाश्रम विहीन समाज की स्थापना में कोई दोष न समझता था। वह बौद्ध था और प्रवृत्ति मार्गों को अनिवार्य न मानता था। वह अहिंसावादी था और राजनीति में भी अहिंसा का प्रयोग करना चाहता था। ब्राह्मण व्यवस्थाकारों की दृष्टि में ये सारी बातें विधर्म थी, विनाशक थी, अतः उनमें प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। इस पृष्ठभूमि पर जब हम देखते हैं कि एक ब्राह्मण सेनापति ने अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्दत्त की संपूर्ण सेना के सामने ही हत्या कर दी थी, तो हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले बिना नहीं रह सकते। पहला, अशोक की नीति में ब्राह्मण प्रतिक्रिया भी उत्तरोत्तर बढ़ती गई। दूसरा, शासक क्षत्रियों को अहिंसावादी होते देख कर राष्ट्र की संरक्षा के लिए ब्राह्मणों ने एक बार फिर शस्त्र ग्रहण किए। तीसरा, संपूर्ण सेना अहिंसात्मक नीति से तंग आ गई थी, वह ब्राह्मण सेनापति के साथ हो गई थी। चौथा, संभवतः मौर्य सेना में बहुसंख्यक ब्राह्मण भी भर्ती हो गए थे, वे भी प्रज्ञा दुर्बल मौर्य शासक वृहद्दत्त का अंत करने के लिए ब्राह्मण सेनापति का साथ दे रहे थे।